हमने कल सीखा था कि हाँ, ये जरूर है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में रहते हुए ठोकरों का लगना जरूर है। जो ठोकरें दुनिया के वसीला से लगती हैं, इसलिए हमने सीखा था कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें दुनिया के नक्शे कदम पर नहीं चलना, हमें इस दुनिया में रहते हुए ठोकर का बायस नहीं बल्कि रहनुमाई का बायस बढ़ना है। हमें इस दुनिया में रहते हुए किसी को गुमराही का नहीं बल्कि उसकी रहनुमाई का बायस बनना है। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमने ये बात सुनी थी, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस, क्योंकि ठोकरों का लगना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके बायस लगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि आखिर जमाने में क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब कड़वे दानों की, बोने वाले की और काटने वालों की, और फिर उस दुश्मन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शागिर्दों को समझ नहीं आई। बहुत दफा इस हवाले को सही तौर पर समझा नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ इसका अगला हिस्सा पढ़ा जाता है और पिछला, इसका जो आखरला हिस्सा है, वहां पर यीशु मसीह ने इसकी तफसीर की है कि उस वक्त भीड़ छोड़कर किसको, यीशु मसीह को और तमाम उसके शिगिर्दों को, अपने अपने घरों को चले गई। क्या लिखा है? उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके शिगिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। तमसील, खासकर जब हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये नबूवत थी कि वो तमसीलों में बात करेगा, वो तमसीलों में कलाम करेगा, वो ऐसे कदीम जमाने के महमे या महमे बोलेगा जिसमें इंसान को बहुत दफा समझ ना आएगी। सो तमसील के लिए बहुत से अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जैसे गोलमोल बातें, दो मायनी बातें के उसकी समझ ना आए आसानी से। लेकिन यीशु मसीह यहां पर बड़े वाजह तौर पर अपने शिगिर्दों को बताते हैं, उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? इब्ने आदम। तो खुदावन खुदा है, जो बीज बोता है वही है जो फल लाता है, और खेत किसको कहा गया है? दुनिया को। सो ये खेत इब्ने आदम, अच्छा बीज, बादशाही के फर्जंद, वो जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, और कड़वे दाने वो हैं जो शरीर के फर्जंद हैं, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। सो आखिर जमाने में क्या होगा? दुश्मन जिन्हें जिन्हों दुश्मन जिसने इनको बोया है, अबलीस है। कौन है? अबलीस है। और काटना क्या है? कटाई क्या है? दुनिया का आखर। सो ये सारी बातें यहां पर वाजह हैं, और काटने वाले कौन होंगे? फरिश्तेगण, खुदा के फरिश्ते होंगे। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, आखिर होगा तो क्या होगा? इसके साथ साथ इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेगा। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया ठोकरों से भरी हुई है, दुनिया ठोकरों से भरी हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया था कि वो क्या हुआ? सब ममारों के लिए कोने के सिरे का पत्थर और ठोकर का पत्थर ठहरा। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ठोकर का पत्थर ठहरा? क्योंकि हर एक यही सोचता था कि वो बादशाह है, वो बादशाह के तौर पर जिंदगी गुजारेगा, लेकिन खुदा का अजीब ही मंसूबा था कि वो एक बच्चे की सूरत में पैदा हुआ और उसने जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा किया। सो खुदावन यीशु मसीह बथेरे बथेरे लोगों के लिए, जो अपने उसके दौर के बहुत बड़े रहनुमा थे, उनके लिए क्या बन गया? ठोकर का बायस। क्यों ठोकर का बायस बना? क्योंकि उन्होंने बच्चे की तरह खुदा के सच को कबूल नहीं किया। सो यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर और ठोकर का पत्थर बना उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया। और इसके अलावा जो यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं खुदा अपने फरिश्तगान को भेजेगा जो इस दुनिया में है, जिनको खुदावन खुदा दूर करेगा। सो हम दुनिया जो ठोकरों से भरी हुई है उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बेशुमार ठोकरों को सोच सकते हैं हमारी ज़िंदगी में, छोड़ दें किसी और की ज़िंदगी में, कि हम किस तरह किसी के लिए ठोकर का बायस बन सकते हैं। अनजाने में, जानते हुए या ना जानते हुए, हम अपनी ज़िंदगी से किसी के लिए ठोकर का बायस बन सकते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब उसकी बादशाही होगी तो वो तमाम ठोकर खिलाने वाली बातों को दूर करेगा। अबलीस सबसे पहले क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा, क्योंकि अबलीस ही वो जड़ है जिससे क्या होती हैं? ठोकरें लगती हैं। उसका काम क्या है? ठोकर लगाना। एक ठोकर है ये, चेक करना कि अंदर क्या है। एक ठोकर ये है जिसको किसी के लिए क्या बनना? आजमाइश का वसीला, या किसी के लिए ठोकर का बायस, या किसी को गुमराह करने का वसीला। सो हम ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को सिखाते हुए क्या कहते हैं? कि वो वक्त आने वाला है जब दुनिया का आखिर होगा, जमाना खत्म होगा, तो ठोकर की तमाम बातें दूर की जाएंगी। मिसाल के तौर पर ठोकर में फाशा चीज़ें जो हमें टीवी में देखते हैं, क्या है? ठोकर का बायस। ठोकर का बायस हम जब उन बद्रूहों को नंगा नाच करते हुए देखते हैं तो हमारा दिल क्या करता है? ललचाता है, और हमारे लिए वो क्या बनती हैं? ठोकर का बायस। टीवी एक वक्त में, एक ही वक्त में ऐसा जरिया है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और एक वक्त में ऐसा जरिया है जिससे हम रूहानी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। टीवी है जिस पर हम खुदा का कलाम भी सुन सकते हैं, बाइबल मुकद्दस की तफसीरें देख सकते हैं, मसीही फिल्म देख सकते हैं। तो क्या हुआ हमारे लिए बरकत का बायस? लेकिन अगर इसी टीवी पर हम गलत, ना फायदा की वो बातें जो हमारे लिए फायदा नहीं, तो वो हमारे लिए क्या बनेगी? ठोकर का बायस। अगर हम नौजवान या हम लोग जो बड़े हैं अपने बच्चों के साथ बैठकर वो चीजें टीवी पर देखना शुरू कर दें जो नहीं मुनासिब, तो हम बच्चों के लिए क्या ठहरें? ठोकर का बायस। सो इसलिए यीशु मसीह कहता है, छोटे बच्चों के लिए ठोकर का बायस ना बनो। लूका की इंजील उसका जब हम 7वां बाब देखते हैं, उसकी दूसरी आयत में, और जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत में, कि हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हमें जो दिन में चलते हैं ठोकर का बायस नहीं बनना। और फिर हमारी जिंदगी में और बहुत सी बातें ठोकर की हो सकती हैं। मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। पहला थसलीकियों उसका 2 थसलीकियों उसका 3 बाप उसकी 6ठी आयत। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल थसलीके की कलीसिया के बारे में बयान करता है। तीसरा बाप उसकी 6ठी आयत। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है। बेकायदा यानी कि बेतरतीब, बेफायदा, जिसमें उसका दुरुस्त चाल चलन नहीं है, और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची है। तो जब हम इस सारे हिस्से का मुतालिया करते हैं तो अबलीस क्या करता है? जो गुनाह का शख्स है वो क्या करता है? ठोकर का बायस बनता है, हलाकत का बायस बनता है, और वो क्या करता है? इंसानों को गुमराह। और जब इंसान गुमराह होते हैं तो उसकी पैरवी में चलते हैं, जब उसकी पैरवी में चलते हैं तो दूसरों के लिए क्या बनेंगे? ठोकर का बायस। जब कोई इब्लीस की पैरवी में चलेगा तो वो बेकायदा चलेगा, सही दुरुस्त चाल नहीं चलेगा। पालूस कहता है ऐसे लोगों से क्या करो? किनारा करो, दूर रहो, उनसे बचे रहो, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानद किस तरह बनना चाहिए। इसलिए कि हम तुम में बेफायदा ना चलते थे। हमारा बेफायदा चलना किसी के लिए ठोकर का बायस बन सकता है। सो पालूस उसूल कहता है जो बेफायदा चलते हैं, जो बेकाराना जिंदगी बसर करते हैं, उनसे किनारा करो और हमारे चाल चलन पर क्या करो? गौर करो। और किसी की मुफ्त रोटी ना खाते थे। पालूस रसूल अपनी जिंदगी में एक खादम की हैसियत से किसी की मुफ्त रोटी नहीं खाते से मुराद यही है कि आप मुझे खुदा का खादम समझते हैं और मैंने आपके घर में 3 महीने का डेरा लगा लिया और तब तक जान ना छोड़ी तब तक मिट्टी मट्टी में आटा खत्म ना हुआ। सो पालूस का ये रवैया नहीं था। पालूस जिस घर में जाता था वहां पर वो बरकत का बायस बनता था, ना कि बरकत देने का, ना कि उनकी जो भी बरकतें हैं वो लेकर अपनी राह होता था, बल्कि मेहनत मशक्कत से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डालें। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार ना था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं ताकि तुम हमारी मानद बनो। अगर मैं आपको कहता रहूं कि बाइबल मुकद्दस पढ़ो जी पढ़ो जी पढ़ो जी और खुद मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया ना करूं तो मैं आपके लिए नमूना बना या फिर ठोकर का बायस? ठोकर का बायस। आपको मैं कहता रहूं कि जी खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि एक दूसरे को माफ करो और मैं आपको माफ ना करूं तो मैं आपके लिए क्या ठहरा? ठोकर का बायस। मैं आपको खुदा के कलाम में से कहता रहूं कि जी खुदावंद के हुजूर दुआ करो, ईमान रखो और खुद एतकाद ना रखूं तो मैं आपके लिए नमूना नहीं बना, क्या बना? ठोकर का बायस। सो पालूस रसूल यहां पर कहता है हम मेहनत मशक्कत दिन रात काम करके, ना कि सिर्फ इस बात पर कि हमको तुम पर इख्तियार है। पालूस रसूल का इख्तियार, ये बहुत अहम सच है कि पालूस रसूल अपने उस इख्तियार के साथ किसी को भी जो कुछ कहता था वो करते थे क्योंकि खुदा का उसे इख्तियार दिया गया था। और जैसे आज बहुत दफा बच्चे अपनी अम्मी अब्बू की बात कम मानते हैं, अगर मैं उनको कहूं कि बेटा आप वहां पर जी आके करो, ये लेकर आओ, तो एक इनमें जाते हैं, तो क्या मैं अपने इख्तियार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना करूं शुरू करूंगा तो क्या होगा? ठोकर का बायस। सो पालूस रसूल कहता है हम चाहते हैं कि आपको अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराए ताकि तुम हमारी मानद बनो, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जैसा जैसे मेहनत करना जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाना भी ना पाए, वो खाने भी ना पाए। दूसरे लफ्जों में जो कोई मेहनत मशक्कत नहीं करता उसे कहता है वो खाना भी ना पाए, उसका कोई हक नहीं बनता। और फिर आगे क्या कहता है? हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। सो थसलीके की कलीसिया में ये बहुत सी बातें थी जो लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रही थी, और वो कौन सी थी? बेकायदा बातें, बेकायदा तौर पर चलना, यानी कि दुरुस्त तौर पर जिंदगी ना गुजारना, बेकायदा यानी कि बेढंग बेतरतीबी की बेफायदा जिंदगी या चाल चलन। और पालूस कहता है हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। तो हम सबके लिए ये बरकत भी है, ये फर्ज भी है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस की जबान को देखें, खुदा के अल्फाजों को देखें, तो जब आदम को सजा सुनाई गई थी तो ये सजा भी है कि तू अपने मेहनत पर सीने की रोटी कमाकर खाएगा। तो बाइबल मुकद्दस आज के दौर में हम पर ये फर्ज है, एक बाप जिसकी 3 बेटियां 2 बेटे हैं उस पर फर्ज है कि उनके लिए वो खाना पीना उसका इंतजाम करे। और खुदा का बंदा मूसा पैदाइश की किताब को लिखते हुए कहता है, खुदावन ने फरमाया कि तेरे लिए ये क्या है, सजा है, या कह सकते हैं इंग्लिश में से कहते हैं कर्ज, कर्ज यानी कि तुझ पर ये सख्त लफ्ज कहते हैं कर्ज को, यानी लानत है। तुझ पर यह सजा है कि तू अपने मेहनत पर सीने की रोटी कमाएगा खाएगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। सो हम सब पर फर्ज है कि हम मेहनत मशक्कत करें। किसी का काम भड़ई का है, किसी का काम पलंबर का है, किसी का काम रंग का है, किसी का काम दर्जी का है, किसी का काम मास्टर का है, किसी का काम मजदूर का है। जैसे आपको मेहनत करना जरूरी है, वैसे ही मुझे भी मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। मेरी मेहनत, अगर मैं खुदा का कलाम ना मुतालिया करूं तो आपके लिए मैं क्या हूं, ठोकर का बायस, और सबसे बढ़कर अपने लिए मैं तरक्की का बायस नहीं हूं। सो वो वक्त आने वाला है, जब तक वो वक्त आता है हमें इस दुनिया में उन तमाम ठोकरों का सामना है। टीवी के बहुत से गंदे प्रोग्राम ठोकर का बायस हैं। बहुत दफा हमारा सुनता हुआ जो हम बातें सुनते हैं वो भी हमारे लिए ठोकर का बायस है। बहुत दफा हम जो कुछ कहते हैं वो हमारे लिए ठोकर का बायस है। मिसाल के तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत दफा हम कहते हैं ये बजाय के जय यीशु दी, हम कहते हैं किसी ना किसी मानने वाले को जिसके बारे में इस दुनिया में हम कहते हैं, बजाय यह यीशु की अपने बच्चों के सामने कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बायस मुझे जेल में डाला जा सकता है। आप समझते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं बहुत दफा अपने खुदावंद का शुक्रगुजारी करने के बजाय हम कहते हैं शुक्र आ फलां दा, शुक्र आ टमकां दा। तो हम क्या हैं, ठोकर का बायस। तो वो वक्त आने वाला है कि ये तमाम ठोकर की बातें, ठोकर की चीजें हमसे दूर की जाएंगी। तो हमें शुक्रगुजारी, बाइबल मुकद्दस कहती है, सवाए खुदा के हमारे लबों से किसी और का नाम तक ना आए। मैं गैर मबूदों की बात कर रहा हूं, कि हम बहुत दफा कहते हैं गैर मबूदों की जय, उतो नान ते रोटी मिलदा वा ओदी जय। सो हम ईमानदारों के मुंह से खुदा की शुक्रगुजारी के सिवा किसी और मबूद का नाम तक ना निकलना चाहिए। और बहुत दफा हम हासे हासे में मजाक मजाक में कहते हैं, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, यीशु मसीह के सिवा कोई और नाम, किसी और मबूद का नाम तक हमारे लबों पर ना आए। क्योंकि अगर हम अपने यीशु मसीह की बात नहीं करेंगे तो फिर उसकी पहचान का बायस भी नहीं बनेंगे। दानियल की मिसाल इसलिए मुझे अंदर से बहुत ज्यादा हौसला देती है। तमाम यहूदी कौम जो बाबल में लेके गए गुलाम हैं, गुलामी की हालत में भी दानियल कहता है, जब वो खुदा का कलाम उसे सुनाता है और कहता है कि मेरा खुदा तेरे लिए अजीब काम कर सकता है, वो हिकमत का खुदा है, वो ही मुझे हिकमत देता है। सब किसको था सजदा करते थे, नबूकदनज़र को, जब नबूकदनज़र का वो बड़ा बाजा बजाया जाता है, पां पां, मुझे नहीं पता कैसे था, लेकिन सारा शहर उसके बुत के आगे झुक जाता था, सवाए दानियल के और उन दूसरे नौजवानों के। तो हमें इस मुल्क में रहते हुए, इस जमीन में रहते हुए, इस धरती पर जो ठोकरों से भरी हुई है, अबलीस के फरेबों से भरी हुई है, हमें उसके गुण नहीं गाने। हमें किसके गुण गाने हैं? यीशु मसीह के, खुदा बाप के। दानियल की किताब का कभी मौका मिला तो हम मुतालिया करेंगे कि किस तरह वो अपने मुल्क के, अपनी आवाम के, अपने लोगों के दरमियान में से क्या निकला, ठोकर का बाज नहीं बल्कि नमूना बना। सो हमें बेकायदा तौर पर नहीं बल्कि दुरुस्त तौर पर जिंदगी गुजारनी है। और क्या लिखा है? नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, बदी करने में हिम्मत तो हार जाएं, लेकिन नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। बदी करने में हिम्मत हारने से मुराद ये बदी ना करो। इसका ये मतलब नहीं मैं बदी करूंगा और घोड़ों की गिट्टों पर भी कड़ीस कर उस बदी को करूंगा, नहीं, बदी ना करें बल्कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारो। और अगर कोई हमारे इस खत की बातों को ना माने तो उसे नगाह में रखो और उससे सोबत ना रखो ताकि वो शर्मिंदा हो। पालूस कहता है कि मुझे लाइन लगानी होगी कि अगर कोई खुदा के कलाम को हकीकी तौर पर जिंदगी में नहीं लेता, इन बातों को, इन हुक्मों को नहीं मानता, तो फिर उससे सोबत ना रखो, उससे दूर रहो। लेकिन उसे दुश्मन ना जानो बल्कि भाई समझकर नसीहत करो। नसीहत करनी है जो बेकायदा तौर पर चलते हैं। सो इस दुनिया में बहुत सी ठोकरें हैं, हमें उन ठोकरों में नमूना बनना है, ठोकर नहीं बनना। तो आज के पैगाम में सवाए यीशु के, सवाए यहोवा खुदा के, चाहे आप उसे यहोवा यरी कहें, चाहे यहोवा शामा कहें, शालूम कहें, यहोवा राफा कहें, यीशु मसीह कहें, खुदावंद कहें, मसीह कहें, खुदावंद खुदा कहें, कादरे मुतले कहें, हक ताला कहें, मेरा चुपान कहें, मेरा चरवाहा कहें, आमीन कहें, जो भी नाम आपकी जुबान पर आता है सवाए खुदावन खुदा के, किसी और मबूद का नाम ना आवे। और जब चोट लगे तो क्या करते हैं हम? आप जानते हैं आप क्या कहते हैं? खुदाया रहम, ये कहने की जरूरत है। जब किसी खूबसूरत चीज को देखें तो खुदा तेरी तारीफ हो ना के आप जानते हैं कि हम कौन सी जबानदारी इस्तेमाल करते हैं। दानियल की ये बहुत प्यारी मिसाल है। वो उस दौर में रहता था, उनके मुतहत था, नबूकदनज़र के इख्तियार में था, लेकिन वो अपने लबों से, उनकी जबान नहीं, उनकी जबान उसने सीखी थी लेकिन उसके ऐन मुताबिक वो जिंदगी बसर नहीं करता था। उनके रीति रिवाज उसके हुक्म को नहीं माना कि तुम जब नरसिंगा फूका जाए तो मेरे आगे सजदा करना। सो हमारा रोजमर्रा के जुमले जो खुदावन तेरी तारीफ हो, यीशु नासरी तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया खुदावन, ना के वो लफ्ज जो हम ना बाइबल मुकद्दस इस्तेमाल करती है ना ही हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसे बहुत दफा कहते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी आदत बन गई है, इस आदत को नहीं बनाना। अगर हम तब्दीली का बात चाहते हैं, जब कोई कहे जी छोड़ें इस बात को, तो हम कहें खुदावन तेरी तारीफ हो, यीशु नासरी तेरे नाम को जलाल मिले, इसी से हम पहचाने जाएंगे कि हम किसके हैं। अगर हम कहें झूले झूले लाल कलंदर वेले वेले वाले आ जा, तो फिर हम किसके मानने वाले हुए? उसके। अगर हम कहेंगे ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਖਾਈਏ ਨਾਨ ਤੇ ਹਲਵਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਹੈਂ? ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੇਂ ਪਾਲੂਸ ਸੂਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਫਾ ਯਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਂ, ਯਸੂ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਔਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਗਿਆ ਜਿਸਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ ਨਜਾਤ ਹੋ, ਜਿਸਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਗੀਤ ਹਮੇਂ ਗਾਣੇ ਹੋ।